ॐ हे वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम टेक्स्ट 25 डिलीवरेंस ऑफ यमल अर्जुन ट्रीज देव ऋषि मे प्रियतमो यदि मोधनदात्मजो तत्तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना So we'll read the translation of 24 and then this was the 25. The Supreme Personality of Godhead Shri Krishna, to fulfill the truthfulness of the words of the greatest devotee, Narada, slowly went to that spot where the twin Arjuna trees were standing. Although these two young men are the sons of the very rich Kuvera and have nothing to do with them, Devarishi Narada is my very dear and affectionate devotee. And therefore, because he wanted me to come face to face with them, I must do so for their deliverance. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nal, Kuvar and Manigreev actually had nothing to do with devotional service or seeing the Supreme Personality of Godhead face to face. For this is not an ordinary opportunity. It is not that because one is very rich or learned or was born in an aristocratic family, one will be able to see the Supreme Personality of Godhead face to face. This is impossible. But in this case, because Narad Muni desired that Nal, Kuvar and Manigreev see Vasudev face to face, the Supreme Personality of Godhead wanted to fulfill the words of His very dear devotee Narad Muni. If one seeks the favor of a devotee, instead of directly asking favors from the Supreme Personality of Godhead, one is very easily successful. Srila Bhaktivinoda Thakur has therefore recommended, Vaishnava Thakur Tumara Kukur Bhuliya Jana Hamore Krishna Se Tumara Krishna Dite Par. One should desire to become like a dog in strictly following a devotee. Krishna is in the hand of a devotee. Adhurlabham Atma Bhakto. Thus, without the favor of a devotee, one cannot directly approach Krishna. What to speak of engaging in His service? Narottam Das Thakur therefore sings, Chhadiya Vaishnava Seva Nistara Paiche Keva. Unless one becomes a servant of a pure devotee, one cannot be delivered from the material condition of life. In our Gaudiya Vaishnava society, following in the footsteps of Rupa Goswami, our first business is to seek shelter of a bona fide spiritual master, Adu Guru Ashraya. So we seek the blessings of all the Vaishnavas. Actually, I have been told to speak in Hindi because there is some recording going to be there for some channel. So, class will be in Hindi. Should I go? Thank you. Okay, na? Good, they told me in the morning. So, yahan par ye jo प्रसंग है श्रीमद्भागवतम का नलकुवर और मणिग्रीव का उद्धार इसकी जो विशेषता है यहाँ इस श्लोक में और तात्पर्य में समझने को आ रही है कि नलकुबेर और मणिग्रीव की कोई योग्यता नहीं थी और योग्यता तो बहुत दूर की बात है इच्छा भी नहीं थी कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने कि भगवान के दर्शन करेंगे उनके पास जाएंगे ऐसे कोई विचार नहीं थे वहाँ पर ये तो नारद मुनि की विशेष कृपा जो उन पर हुई उसके कारण उनको इस विशेष सौभाग्य की प्राप्ति हुई तो भगवान के शुद्ध भक्त की जो महिमा है वो यहाँ पर देखने को मिलती है कि भगवान के शुद्ध भक्त की इच्छा के समक्ष भगवान भी सब कुछ छोड़ देते हैं और यहाँ पर क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं भगवान, ऑल दो दीज टू यंग मैन आर द सन्स ऑफ द वेरी रिच कुवेरा एंड आई हैव नथिंग टू बी डू विद देम, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है उनसे, लेकिन फिर भी क्योंकि नारद मुनि ने इच्छा व्यक्त की है मेरे प्रेमी भक्त ने, तो फिर इनका अवश्य उद्धार होगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़े सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक भक्त को, जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, उसे महान भक्तों की शरण लेने की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही गहरा विषय है, हमारी भी कोई योग्यता नहीं है इसके ऊपर बोलने के लिए, लेकिन शुद्धिकरण के लिए, भक्तों का अनुगमन करने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का यदि हम अध्ययन करें तो अलग अलग स्थान पर नारद मुनि की कृपा अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है, और यही भक्त की महिमा है कि भक्त का कोई ऐसे एक ही कोई विशेष प्रकार का प्रचार अभियान नहीं होता है, वो समय परिस्थिति के अनुसार अपने प्रचार अभियान को बदलता रहता है, किस तरह की युक्ति को कहाँ प्रयोग करना है और कहाँ पर नहीं करना है, यही उसकी परिपक्वता है। तो यहाँ पर नारद मुनि उनको दंड दिए, श्राप दिए, एक तरह का दंड है वो। और बाह्य रूप से देखा जाए तो कोई व्यक्ति बोलेगा अरे कितने उद्दंड हैं कि दंड दे दिए, बस उनकी तरफ देखा नहीं तो उनका सम्मान नहीं किया। तो बाह्य रूप से क्योंकि हमारा जो मिथ्या अहंकार होता है उसके कारण हम शुद्ध भक्ति की कृपा को नहीं समझ पाते हैं। व्यास देव की यदि जीवन में देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम प्रारंभ ही उससे होता है। चौथे अध्याय में जो पहला प्रसंग आता है नारद और व्यास संवाद का, कि व्यास देव भ्रमित हैं, इतने सब उन्होंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, लेकिन इतनी सब रचना करने के उपरांत भी उनको संतुष्टि का अनुभव नहीं हो पाया। सो उनके जो गुरु हैं वो वहाँ प्रकट हुए, नारद मुनि प्रकट हुए, और नारद मुनि ने सीधा उनको बताया कि कहाँ आपने गलती की है। तो जहाँ पर सीधे रूप से व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए तैयार है, नारद मुनि सीधा ज्ञान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है व्यास देव का जो स्तर है, और व्यास देव जो हैं वो उनको बड़े प्रेम से बात नहीं करते हैं, सीधा उनको उनका दोष दिखाते हैं कि आपने इतने सारे ग्रंथों की रचना की लेकिन उसमें से एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं रचा जिसमें केवल कृष्ण भगवान का गुणगान किया गया हो, और जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक कैसे लोग शुद्ध भक्ति की ओर आकर्षित होंगे। और उनको डांटा, उनको बोला ऐसा क्यों किया आपने, लोग तो पहले से इंद्र तृप्ति के प्रति आ सकते हैं और आप अलग अलग शास्त्रों की रचना किए जा रहे हो जिसमें कि इंद्र तृप्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो लोग तो उसमें ही फंस के रह जाएंगे। तो जहाँ पर गुरु समझते हैं कि शिष्य तैयार है सीधे रूप से हैवी इंस्ट्रक्शन, भारी निर्देश लेने के लिए, तो वो उस तरह से व्यवहार करते हैं। गुरु का एक अर्थ होता हैवी ऑल्सो, भारी, वजन में भारी नहीं, निर्देशों में भारी, लेकिन वो भारी निर्देश शिष्य की मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, विशेष रूप से उसकी जो आध्यात्मिक क्षमता को देख के दिया जाता है। तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है भागवतम में महाराज प्रियव्रत का, कि किस प्रकार से नारद मुनि ने एक बुरा अलग ही वहाँ पर रोल लिया, कि वहाँ पे किस प्रकार की आवश्यकता थी। सो महाराज प्रियव्रत उत्तानपाद के भाई थे, स्वयं मनु के दो पुत्र थे। भागवतम में ये जो लीनेज है, ये जो वंश है, इसका विस्तार से वर्णन है। और प्रियव्रत बड़े ही निष्ठावान शिष्य थे नारद मुनि के, और सदैव वो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, और उन एक मन एकाग्र चित्त से वो भगवान की सेवा करते थे, और निरंतर रूप से भक्तियों का करते हुए वो कृष्ण स्मरण कर रहे थे। राज्य में नहीं रहते थे, महल में नहीं रहते थे, जंगल में जाके रहते थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। लेकिन समस्या ऐसी हो गई, क्योंकि ये भौतिक जगत में कभी भी कुछ भी अपेक्षा किया जा सकता है। तो एक समय के बाद जब उत्तानपाद का जो वंश आगे बढ़ रहा था वो आके रुक गया प्रचेतास के बाद, तो कोई योग्य राजा नहीं था जो इस पूरे ब्रह्मांड के शासन को चला सके। तो अभी पिता जो थे स्वयंभू मनु, वो चिंता में थे अभी कौन चलाएगा, क्योंकि हमने तो चलाया इतने साल, अभी हमारे पुत्रों ने चलाया, उनके पुत्रों ने चलाया, तो एक ही अभी रास्ता बचा था, और वो था फिर से प्रियव्रत के पास जाना और उसको वापस लेके आकर राज्य पर बैठाना शासन करने के लिए. बड़ा गंभीर विषय है. नारद मुनि का शिष्य है. इतने वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से वो तप कर रहा है, जिसकी कोई रुचि नहीं है भौतिक इच्छाओं में, शासन में, राज्य में. ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी तरह से हार गया एक इलेक्शन और अभी मौका मिला तो तुरंत गद्दी पकड़ने के बैठने के लिए तैयार. ऐसी तो परिस्थिति थी नहीं. तो पूरे विरक्त इस तरह के व्यक्ति देखने को मिलेंगे नहीं आजकल, कि जिनको शासन से, गद्दी से कोई रुचि नहीं है. तो जब स्वयंभू मनु उनके पास गए तो वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे. और स्वयंभू मनु बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि ये तो नारद मुनि का शिष्य है, ये तो मानेगा ही नहीं. और नारद मुनि खुद उनको बोल रहे थे भाई नहीं, फंस जाएगा, ये जो दुनिया है बड़ी बड़ी भयंकर है. क्योंकि यहाँ पर तीन गुणों का जो प्रभाव है वो बड़ा प्रबल है. और वो प्रभाव ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति कोयले की खान में जाए और बोले कि मैं सफ़ेद कपड़े पहन के जा रहा हूँ और काला होके नहीं आऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रजगुण तमोगुण का प्रभाव हमको प्रभावित कर ही देगा. और उसमें भी यदि कोई व्यक्ति ऐसी व्यवस्था में रह रहा है जहाँ पर प्रभाव केवल किसका है, रजोगुण का और तमोगुण का, खासकर रजोगुण का. और शासन करना मतलब रजोगुण का प्रभाव होता ही है. बिना रजोगुण के प्रभाव के शासन करना मुश्किल है, कठिन है, बहुत कठिन, हो ही नहीं पाएगा. तो नारद मुनि मना कर रहे हैं, स्वयंभू मुनि बोल रहे हैं उनके पिता. और अभी क्या पूरे ब्रह्मांड के शासन का सवाल है ना, तो जब बड़ी चीज़ हो जाती है तो फिर बड़े लोगों को मैदान में उतरना पड़ता है. तो फिर ब्रह्मा जी उतरे अपने हंस वाहन पर बैठ के आए, उनके साथ बहुत सारे ऋषि मुनि, चारण, गंधर्वा, क्योंकि अकेले नहीं जाना चाहिए, कोई बड़ा मीडिएशन करना है तो सबको साथ में लेके आए प्रेशर डालने के लिए. तो बड़ी टीम आ गई, बड़ी टीम आके बैठ गए उधर. उसके पहले नारद मुनि ने प्रणाम किया, स्वयंभू मनु ने प्रणाम किया, सब लोग बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किए. और सब स्वागत होने के बाद ब्रह्मा जी ने बोला, देखो ये मत समझना कि मुझे तुमसे कुछ ईर्ष्या है और मैं तुम्हारे को ज़बरदस्ती इधर बैठाने आया हूँ. बात ऐसी है कि सबसे जो बड़ी इच्छा है इस दुनिया में वो है भगवान की, और ये भगवान की इच्छा है जो मैं लेके आया हूँ. आई एम जस्ट ए ऑर्डर कैरियर, मैं एक संदेश वाहक के रूप में आया हूँ. भगवान चाहते हैं कि अभी आप शासन करें, और यदि आप शासन करेंगे भगवान की इच्छा के अनुसार, इस सेवा को स्वीकार करेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी है, आप फंसेंगे नहीं, आप लीजिए इसको. अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते. रूपा जी कोट करते हैं वहाँ पर तात्पर्य में, रूप गोस्वामी के द्वारा दिया हुआ ये संदेश, जो उसमें बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण से संबंधित कार्य करता है और सब चीज़ों को कृष्ण की सेवा में प्रयोग करता है, तो फिर वो इस भौतिक जगत के रजोगुण और तमोगुण से बच सकता है. इस भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं उनको यदि भगवान की सेवा में प्रयोग किया जाए तो फिर उनके प्रभाव से वो बच जाता है. तो ब्रह्मा जी उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप जो हैं भगवान की सेवा में लगिए, इसको भगवान की सेवा के रूप में स्वीकार कीजिए और कोई समस्या नहीं होगी. तुम तो अब जो ना भांगरी सरोज कोशा दुर्गाश्रितो निर्जित सत सपत्नः. उन्होंने बोला कि नाभ अंगरी सरोज कोशा, भगवान विष्णु जिनकी नाभि से कमल निकलता है, जिस प्रकार से एक जो क्या बोलते हैं मधुमक्खी, वो कमल के अंदर जो अंदर होता है उसके अंदर शरण लेती है शहद पीने के लिए, उसी प्रकार से यदि आप भगवान के चरण कमलों की शरण लेंगे तो निश्चित रूप से आप बच जाएंगे. जब मधुमक्खी कमल के अंदर प्रवेश करती है तो कमल की पंखुड़ियाँ उसको ढक के रखती हैं, उसको छाँव प्रदान करती हैं, और बहुत तेज धूप सूर्य की भी उसको, मधुमक्खी को हानि नहीं पहुँचा पाती. तो उसी प्रकार से जब आप भगवान के चरण कमलों की शरण लेकर इस भौतिक जगत में सेवा करेंगे तो भगवान की सुरक्षा, भगवान का कवच आपके ऊपर रहेगा और आपको किसी प्रकार से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है. और इस भौतिक जगत से आप मुक्त हो जाएंगे. समाशिता ये पद पल्लव पिदम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वस्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम. हाँ, ये बात तो सत्य है कि इस भौतिक जगत में हर पदम, हर पद पे, हर पग पे, हर कदम पे धोखा है, खतरा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं. भागवत भी स्वीकार करता है, भगवद्गीता भी स्वीकार करती है, सारे शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं। केवल कुछ भौतिकवादी लोग जो पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि हम होंगे कामयाब, केवल वो सोचते हैं कि यहाँ पर खतरा है तो क्या है, खतरे के बिना मजा क्या है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको पता है कि यदि कदम कदम पे खतरा है तो निकलो यहाँ से। यदि किसी ने बताया है कि इस अभी बाहर जो चौपाटी है वहाँ पर उस समय तो बिना बताए आए थे, मान लो इस बार यदि बॉम्बे पुलिस ने बता दिया कि आतंकवादी आ गए हैं और वो घूम रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उन्होंने बॉम्ब लगा दिए हैं सब जगह, लैंड माइंस लगा दिए हैं रात को, तो कोई बोलेगा नहीं हम तो बहादुर हैं, देखते हैं क्या होगा। तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति उधर नहीं जाएगा। जैसे कि बुद्धिमान व्यक्ति ने जब सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो वो कोशिश करेगा कि वो कोयले की खान में ना जाए, लेकिन यदि है वहाँ पर तो अभी निकलना है तो उसका प्रयास वो सोचेगा फिर, ऐसा नहीं कि चलो इधर ही खेलते रहेंगे थोड़े दिन और। तो यहाँ पर भागवतम एकदम क्लियरली बता रहा है भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेता है तो ये भवसागर, ये बड़ा लैंडमाइन का जगह जहाँ पर हर जगह बॉम्ब फिट किए हुए हैं, वो सब एक छोटे एक गड्ढे के समान हो जाता है, और वो भी गड्ढा कितना छोटा, जितना कि गाय के बछड़े का जो खुर है उसका जो पैर है उससे जो गड्ढा बनता है कहीं पे पानी में पैर रखने से या मिट्टी में पैर रखने से, उसको पार करने में कितना मुश्किल होता है, एक छोटा बच्चा उसको पार कर सकता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस संसार को भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जस्ट ऐसे ही पार कर लेते हैं, और वो बोलते हैं कि यदि आप भगवान की शरण नहीं लोगे और तो क्या होगा, दुर्गाश्रितो निर्जित सत सपत्नहा। तो यदि भगवान के चरणों की शरण लिए बिना यदि कोई व्यक्ति जंगल में भी रह रहा है तो वो ऐसा है कि जैसे वो जो छह उसके मुख्य जो पांच इंद्रियां और मन या छह पत्नियां हैं उनके साथ रहना, इतने सारे सेंस ऑब्जेक्ट के साथ रहना काफ़ी कठिन हो जाता है, तो बहुत मुश्किल है, वो उसको आपको मार डालेंगे। भुंगशेव भोगान पुरुषादिष्टनान, तो बोलते हैं भगवान ने व्यवस्था की है कि आप इस भौतिक जगत में भोग करते हुए भगवान की सेवा करो, कोई समस्या नहीं, विमुक्त संगा प्रकृतिम भजस्वा, और आप निश्चित रूप से मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार का जब आश्वासन उनको दिया गया, चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कबू ना बाड़ी भे तुम्हारा विषय तरंगा, कि आपके जीवन में कभी विषय का तरंग का वेग नहीं आएगा मेरे भक्तों, यदि आप भगवान के नाम का जप करोगे, प्रचार करोगे। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके भक्त इस आंदोलन में बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, अलग अलग जगह जाके प्रचार करते हैं, अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी हालांकि खतरा हमेशा है प्रभावित होने का, लेकिन वो प्रभावित नहीं होते क्योंकि पूर्णतया वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तो ब्रह्मा जी के प्रस्ताव पर अभी एक तरफ ब्रह्मा जी हैं, उधर स्वयंभू मनु बैठे हैं, नारद मुनि तो एकदम अभी बैकग्राउंड में चले गए हैं क्योंकि उनके गुरु उनके पिता वहाँ पर आ गए हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भक्ति में कई बार, बड़े बड़े अथॉरिटीज़ आ गए और उनके बीच में हमको कोई निर्णय लेना है, यू नो टेकिंग ए डिसीजन विच इज़ वेरी यू नो कॉन्ट्राडिक्टरी एंड प्लीजिंग एवरीबडी। तो भागवतम में ये प्रसंग कई जगह आते हैं ऐसे, जैसे कि जब अर्जुन के सामने भी ये दुविधा खड़ी हुई थी कि जब एक तरफ युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ दो और भीम बोल रहा है कि मार दो और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि बताओ अभी क्या करना है, दोनों को संतुष्ट करो अभी। तो ऐसे में ना बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है और वो बुद्धि भगवान ही देते हैं, तेषां सतद्युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। तो भगवान के क्योंकि अर्जुन बड़े ही निगाढ़ भक्त हैं, बड़े ही प्रेमी भक्त हैं, घनि निष्ठावान भक्त हैं, तो भगवान ने उनको बुद्धि दी और उस बुद्धि के अनुसार उन्हें निर्णय लिया कि अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि है उसको काट के फेंक दिया जाए। तो उससे क्या होगा, क्योंकि द्रौपदी का मुख्य पॉइंट था, विषय ये था कि मैं ही जानती हूँ माँ का दुख क्या होता है, तो आप मत मारो इसे, और ये तो इसकी जो माँ है ये तो हम आपके गुरु माता है, क्यों मार रहे हो। और भीम बोल रहे थे नहीं छोड़ना नहीं चाहिए इसको, बदमाश है। तो माँ के लिए यदि वो मणि निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा तो जिंदा है ना, मणि गई तो गई। तो अर्जुन ने क्या किया, मणि को काट के फेंक दिया, तो जीते जी अश्वत्थामा मर गया दूसरों की नज़रों में और अपनी नज़रों में भी, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए अपमान जो है वो मृत्यु से भी बदतर है, लेकिन माँ के लिए जिंदा रह गया। तो इस तरह से कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जो व्यक्ति को यू नो निर्णय लेना होता है कि क्या किया जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मा जी जो बोल रहे थे और नारद मुनि बोल रहे थे, उनमें दोनों में कोई भेदभाव नहीं था, उसमें कोई विरोधाभास नहीं था, क्योंकि दोनों बोल रहे थे कि आप भगवान की शरण लो। नारद मुनि भी बोल रहे थे भगवान की शरण लो और ब्रह्मा जी भी बोल रहे थे भगवान की शरण लो। और जब ब्रह्मा जी ने ये बात बता दी कि आप यदि शासन करेंगे भी और भगवान का सेवा करते हुए करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप हमारे निर्देश पर कर रहे हैं। और उसके बाद बताते हैं भागवतम में, मान वर्धनो महताम। तो प्रियव्रत महाराज शासन करने लगे मान रखने के लिए ब्रह्मा जी का, तो अपने वरिष्ठों का मान रखने के लिए उन्होंने शासन को स्वीकार किया। वो किसी प्रतियोगिता में नहीं थे कि किसी ना किसी तरह बस वेट कर रहे थे कि कब उत्तानपाद ना हो या उनका वंश ना हो और या उनको मरवा दिया जाए, यू नो जैसे आजकल के राजनीति के करते हैं अलग अलग घटनाएं। जैसे यदि मुगल एम्पायर में देखा जाए तो मतलब एवरी सन प्रैक्टिकली किल्ड हिज फादर, यू नो, टू गेट द किंगडम, टू गेट द थ्रोन, और पुट हिम इन द जेल। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रियव्रत महाराज की कोई इच्छा नहीं थी शासन करने की, वो पूर्णतया संतुष्ट थे भगवान की सेवा में, अपना विरक्त जीवन बिताने में, लेकिन मान वर्धनो, मान रखने के लिए। अर्जुन भी भगवद गीता में वो बोले ठीक है चलेगा, रह लेंगे ऐसे, कुछ तो कर लेंगे। हालांकि मुश्किल था अर्जुन के लिए, वो आचार्य बताते हैं कि भिक्षा मांगे रहना बहुत मुश्किल होता था उसको, लेकिन फिर भी वो बोल तो रहा है ना कि जाने दो, छोड़ दो, नहीं करेंगे युद्ध। अर्जुन बोल रहे हैं नहीं, कृष्ण भगवान बोले नहीं, आपको युद्ध करना ही होगा, युद्ध करना ही होगा मेरे लिए। तो प्रियव्रत महाराज ने स्वीकार किया। विश्वकर्मा प्रजापति की पुत्री बरहिष्मति से विवाह किया। विवाह करने के बाद उनके 10 पुत्र हुए, एक सुंदर पुत्री ऊर्जास्वती को जन्म दिया, और बहुत बहुत उन्होंने समय तक यू नो शासन किया, लाखों लाखों साल तक एक्चुअली। और ये शासन काल में इस तरह की क्रियाएं की कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। एक बार उन्होंने सोचा कि सूर्य जो है जब उत्तरी ध्रुव पर होता है तो ओके, सो वी कैन डू इट, व्हाट शुड आई डू नाउ देयर जी एंड सो वेयर आर यू भाई। तो उन्होंने एक बार सोचा कि सूर्य के उत्तरी ध्रुव पर, ब्रह्मांड में उत्तरी ध्रुव पर जब सूर्य की किरणें होती हैं तो दक्षिण ध्रुव, नॉर्दर्न पोल पे होती हैं तो साउथ पोल पे नहीं होती हैं। तो उन्होंने निर्णय किया कि सूर्य की किरणें जहाँ पर नहीं पहुँचती हैं वहाँ भी सूर्य की किरणें पहुँचनी चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसे रथ का निर्माण किया कि उस रथ पर बैठ कर वो सूर्य के पीछे पीछे जाते थे, और वो सूर्य से ऐसी किरणें आती थी कि जिससे पूरा जो ब्रह्मांड था वो प्रकाशवान हो जाता था। और उसके रथ के पहियों से 7 ग्रहों का यू नो 7 द्वीप्स उनको बाउंड्री मिली। मतलब इस तरह की क्रियाएं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो शासन कर रहे थे तो शासन करते 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 एक समय वो रेस्टलेस होने लगे। बोलने लगे मेरी, हालांकि मैं कृष्ण भावना में सेवा कर रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ। एंड ही स्टार्टेड कंडेमिंग हिमसेल्फ, आई हैव हैड एनफ, आई एम नॉट गोइंग टू एन्जॉय एनी मोर। सो दिस कंडेमिंग वन सेल्फ, अपने की जो भर्त्सना कर रहे थे, दिस इज एक्चुअली द मर्सी ऑफ द लॉर्ड विच कम्स, जो केवल उन्हीं के जीवन में आती है जिन्होंने भगवान की बहुत ही प्रमाणिकता से सेवा की है। नहीं तो जो साधारण लोग हैं जब किसी भौतिक चीज को करते हैं और उसमें फंसते जाते हैं तो वो उसमें और ज़्यादा फंसते जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ने अपने गुरु की, भगवान की, वैष्णवों की प्रमाणिकता से सेवा की है, तो प्रभुपाद जी क्लियरली लिखते हैं अपने तात्पर्य में, महाराज प्रियव्रत हैड सर्वड द ग्रेट सेज नारद सिंसियरली, देयरफोर इवन दो ही हैड एक्सेप्टेड मेटेरियल ऑपुलेंसेज ही कुड नॉट बी डिवेटेड फ्रॉम हिज ओन टास्क, ही अगेन बिकेम कृष्णा कॉन्शियस। एंड प्रभुपाद कोट्स, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये जो आश्वासन है भगवान का कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ जो क्या बोलते हैं मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, तो तो ये जो रक्षा है इसके बारे में कई बार लोगों के मन में अलग अलग प्रकार का भ्रम होता है, अलग अलग प्रकार के संदेह होता है कि रक्षा क्या है, ये कृपा क्या है। तो एक्चुअली यदि हम भागवतम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि भक्त ये कृपा है जो भक्तों की कृपा है या भगवान की कृपा है कि जब कठिन परिस्थिति आएगी, जब ऐसी संभावना आएगी कि हम भौतिक चीज़ों में फंसने की पूरी संभावना है या फंस चुके हैं, तो भगवान कहीं से तो आके हमको क्या करेंगे, याद दिला देंगे, स्मृति प्रदान करेंगे। तो कठिन परिस्थितियों में भी भगवान की स्मृति को ना भूलना, भगवान के निर्देशों को ना भूलना, ये भगवान की विशेष सुरक्षा कवच है। इफ समबडी आस्क कि व्हाट इज द लॉर्ड्स प्रोटेक्शन कवच, सिक्योरिटी, सो दिस इज द मेन सिक्योरिटी। क्योंकि ध्रुव महाराज के जीवन में यदि हम देखेंगे तो ऐसे ही हुआ। ध्रुव महाराज के जीवन में भी जो मेन सुरक्षा भगवान ने प्रदान की, हालांकि वो जंगल में गए तो सुरक्षा ये नहीं थी कि उनको शेर ना खाए, चीता ना खाए, सांप ना काटे, मेन सुरक्षा थी कि ध्रुव महाराज भक्ति करते हुए एकाग्र चित्त से भक्ति करते रहें, इधर उधर च्युत ना हो, भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकें। तो ये जो भक्तों का जो संघ का प्रभाव है ये बड़ा विशेष है। किसी ना किसी प्रकार से जब हम भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, उसका उसका प्रभाव बहुत ही सटल होता है। जैसे कि जो रेडियो एक्टिव वेव्स, न्यूक्लियर वेव्स होते हैं, यदि वो यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, प्रसारित हो रही हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर के जो शरीर के अंग हैं वो खराब होने लगेंगे। जो बच्चों का जन्म होगा वो अपंग बच्चे जन्म लेंगे। तो ये नकारात्मक उदाहरण है, लेकिन पॉजिटिव रूप से यदि देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से हरिनाम के संपर्क में आता है, भक्तों के संघ के संपर्क में आता है, तो वो प्रभावित हो जाता है। जैसे कि कल सनातन गोस्वामी का तिरुभाव था और चर्चा हो रही थी सनातन गोस्वामी के बारे में, तो एक प्रसंग आता है जब एक शिव जी का भक्त होता है और वो शिव जी जब उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके बोलते हैं जाओ तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ, तुमको चिंतामणि चाहिए उनके पास जाओ, वो देंगे आपको। तो आए तो चिंतामणि लेने के लिए थे, और जब सनातन गोस्वामी ने बोला चिंतामणि चाहिए, देखो उस कोने में पड़ी है कचरे के अंदर, उठा लो, और वो अपना मग्न थे शास्त्र लिखने में, जप करने में, उसको ढूंढा, उसने मिल गई, उसको खुश हो गया, प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद उसने दिखाई, बोला ले जाऊं, हाँ ले जाऊं, लेके गया। बुद्धिमान था, जाते जाते उसको समझ में आया, अरे यदि ये इतनी कीमती है तो कचरे में क्यों फेंक के रखी थी, हैं जरूर इनके पास से और ज़्यादा कीमती वस्तु है कोई। तो ये प्रभाव होता है एक भक्त का संग करने से, कि हम उदासीनता जब देखते हैं भक्त की इस भौतिक जगत के प्रति, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि भाई ऐसा क्या है इसमें कि ये भौतिक जगत के प्रति पूरा उदासीन है, पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है और ये केवल हरिनाम कर रहा है, तो जरूर इसके पास कुछ ना कुछ है। तो वाए दौड़े दौड़े, बोले क्या है और बताओ, बोले है तो लेकिन आपको इसको फेंकना पड़ेगा पहले, यदि आप ये फेंक देंगे तो फेंकने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आपको अच्छी चीज़ देंगे इससे भी। तो ये भक्त जो हैं कई बार उनकी परीक्षा लेते हैं, जो व्यक्ति है जो भगवान के पास आना चाह रहा है, और जब वो परीक्षा ली जाती है और वो परीक्षा है कि जो हमारी आसक्तियाँ इस भौतिक जगत की वो उनको हमको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं तो वो छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि ये जो भक्त थे शिव जी के, जब ये सनातन गोस्वामी के संपर्क में आए तो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए उनकी भक्ति को देख के, उनकी उदासीनता को देख के इस भौतिक जगत के प्रति, कि उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, तुरंत वो जाके उसको फेंक के आ गए नदी में और भगवान की भक्ति को स्वीकार किया। तो ये महान भक्तों के संग का क्या होता है, प्रभाव होता है। रामानुजाचार्य के जीवन में भी ऐसा एक प्रसंग आता है, बहुत सारे प्रसंग हैं लेकिन एक विशेष प्रसंग, जब श्रीरंगम ने श्री रंगनाथ जी की झांकी, उनका जो जुलूस, उनका जो रथ निकलता है उनको बैठा के निकल रहा था, तो हजारों लाखों भक्त उनका गुणगान कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और उसी समय एक व्यक्ति था, वो एक बहुत ही सुंदर युवती के ऊपर छाता लगाकर उसको पंखा कर रहा था और उसको देखे जा रहा था। अभी देखिए कुछ दिनों पहले जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हुई, वहाँ पर 10 लाख लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का रथ खींच रहे हैं, उसी प्रकार का वातावरण यहाँ पर भी था। हजारों लाखों लोग भगवान की ओर देख रहे हैं और ये व्यक्ति सबके बीच में इनकी ओर देख रहा है। तो कुछ भक्त आके बोले रामानुजाचार्य को कि भाई क्या चल रहा है, कुछ कृपा दो कुछ कृपा दो अपनी। सो रामानुजाचार्य बोले अच्छा ठीक है, बुला के लाओ उसको। तो बोले नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सबसे सुंदर चीज़ अभी तक जो मैंने देखी है इस दुनिया में वो है इस युवती की आँखें, और यदि आप मुझे इससे कोई सुंदर वस्तु दिखा दोगे तो मैं छोड़ दूँगा। तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है, शाम को आ जाओ। और शाम को जब वो आए, रंगनाथ जी का जब आरती दीप के साथ हो रही थी, उन्होंने दीप से रंगनाथ जी की जब आँखों का दर्शन उनको कराया और दिव्य दृष्टि उनको प्रदान की भक्ति की कृपा से, तो पूरी तरह से वो उनका अपना जीवन समर्पित कर दिए। किसी ना किसी प्रकार से यदि हम संपर्क में आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भक्ति तीर्थ महाराज जब अपना संकीर्तन के लिए जाते थे, तो एक भक्त, भक्त नहीं बाद में भक्त बन गया, भक्त बोल सकते हैं उसको, एक व्यक्ति जो था, जब भी वो संकीर्तन के लिए जाते वो भक्तों को पकड़ पकड़ के पीटता था। तो भक्ति तीर्थ महाराज, हालांकि वो पीटता था, उसको कुकीज़ देके आते थे जरूर, कुकीज़ बिस्किट जरूर देके आते थे। तो बार बार ऐसा होने लगा, बिस्किट खाता रहा, बिस्किट खाता रहा, एवरी टाइम ही वुड ईट बिस्किट्स। और उसके बाद में बिस्किट खा खा के, कुकीज़ खा खा के फुल टाइम डिवोटी बन गया मंदिर में। तो इसलिए भक्तों का संग थोड़ा सा खतरनाक है। किसी व्यक्ति को थोड़ा भी भौतिक जगत की इच्छा है, जैसे कि रूप गोस्वामी बोलते हैं, यदि किसी को थोड़ी भी भौतिक जगत की आसक्तियाँ हैं तो वो वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि गलती से भी वृंदावन में यमुना नदी के किनारे वंशीवट के नीचे मत चले जाना, जहाँ पर गोविंद अपने त्रिभंग ललित रूप में वंशी बजा रहे हैं। क्योंकि यदि आपने उस रूप के दर्शन कर लिए तो फिर क्या होगा, वापस नहीं आओगे। तो भौतिक जगत से थोड़ी भी आसक्ति है तो उधर मत चले जाना। तो ये भक्तों के संग का प्रभाव होता है। नारद मुनि जब ध्रुव महाराज के संपर्क में आए, सो ध्रुव महाराज पूरे जिद्दी थे, बोले नहीं मुझे चाहिए। नारद मुनि को समझाने का प्रयास किए, उनका एक्चुअली वो एलिवेट करने का प्रयास कर रहे थे ब्राह्मण लेवल पे, कि भूल जाओ, क्षमा कर दो, बच्चे हो, जब मैच्योर हो जाओगे, परिपक्व हो जाओगे, और उस परिपक्वता के समय में भक्ति करना, क्योंकि परिपक्वता के साथ भक्ति करोगे और जब भगवान मिलेंगे तो आपका जो गोल होगा वो भगवत धाम का होगा। लेकिन अभी मत करो, लेकिन वो नहीं माने, तो भी नारद मुनि उनको छोड़ा नहीं। नारद मुनि बोला ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी विचार है उसके साथ करो, जैसे कि भगवान भी छोड़ते नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा, कि चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, भगवान बोलते हैं कि जो धन की अपेक्षा करते हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो ज्ञानी हैं, और जो निराश हैं। और ज़्यादातर लोग जो इस जीवन में, इस दुनिया में आते हैं, उस कैटेगरी में जो निराश होते हैं। और भगवान बोलते हैं उदारा सर्वे वेते, इन लोगों को भगवान उदार बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग मेरे पास आते हैं, लेके जाते हैं और फिर बाद में दूसरों को बताते हैं कि देखो मुझे भगवान से मिला, और फिर और लोगों को लेके आते हैं। कितने उदार हैं। तो जो जितना भी क्रेडिट है वो अपने भक्तों को दे रहे हैं भगवान। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने अपलिफ्ट किया, और अपलिफ्ट करके एक्चुअली उनको सबसे बड़ी जो सुरक्षा प्रदान की कि वो धीरे 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 शुद्ध होने लगे। और धीरे धीरे शुद्ध होकर जब उनको भगवान के दर्शन हुए, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ही केम ऑन वासुदेव प्लेटफॉर्म। वासुदेव स्तर का अर्थ है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों से मुक्त हो जाना। और जब वो इन तीन गुणों से मुक्त हो गए, तब वो समझ पाए कि एक्चुअली मैं गलत एक उद्देश्य के लिए आया था। नहीं तो तब तक वो केवल, उनका ध्यान केवल एक ही था कि मुझे बदला लेना है, मुझे बहुत बड़ा धन राज्य प्राप्त करना है। और जब वो उस स्तर पर आ गए तो फिर वो शोक करने लगे। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय का जो एक 5-6 श्लोक हैं, जिसमें भगवान का दर्शन होने के बाद भी ध्रुव महाराज शोक कर रहे हैं। बोले क्यों मैंने इच्छा की इस भौतिक चीज़ की, और क्योंकि इच्छा की तो भगवान ने फुलफिल कर दी, और समस्या यह है कि अभी 36,000 साल तक इधर अटकना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम एक ही है, भौतिक इच्छा कर सकते हैं, भगवान फुलफिल कर देंगे, लेकिन थोड़ा समय बढ़ जाएगा इस भौतिक जगत में, क्योंकि उसका भोग करने के लिए रहना पड़ेगा। तो इसलिए शायद नारद मुनि बोल रहे थे कि थोड़ा भी घर चले जाओ, बाद में भक्ति करना, कीपिंग द गोल कृष्णा एट द गोल, सो देन यू विल नॉट हैव टू स्पेंड दैट 36,000 ईयर्स, यू नो ही मस्ट हैव कंसीव्ड दैट इन, कि यदि इस इच्छा के साथ जाओगे तो भगवान पूरी कर देंगे और फिर बाद में आप शोक करोगे। कई बार भक्तों के पास कुछ लोग आते हैं कि भाई मेरी इच्छा है, भक्त लोग समझाने का प्रयास करते हैं भाई मत करो, भगवान पूरी कर देंगे पूरी कर देंगे तो फिर अटकना पड़ेगा. किसी की इच्छा होती है नाम प्राप्त करने की, यश प्राप्त करने की, भक्ति के बीच में भी मिल जाती है और बाद में उसको समझ में आता है अरे क्यों फंस गया इसमें, क्यों फंस गया, काश. फिर वो पीछे जाने का प्रयास करता है, ट्राई टू गो इन द बैकग्राउंड, इट्स टू लेट, ही हैज टू नाउ पे द प्राइस, यू नो. उसको वो समय बिताना पड़ता है. तो जो हम पुण्य कार्य करते हैं वो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, भक्त की कृपा मेन है. जब शिला प्रभुपाद जी से उनके भक्तों ने पूछा कि भाई हमने कौन से पुण्य कार्य किए थे कि हमको भक्ति मिली, बोले आई हैव क्रिएटेड पायस क्रेडिट्स फॉर यू, मैंने आपके लिए पुण्य बनाया है. नारद मुनि ने नल कुबरा और मणिगिरि के लिए पुण्य बनाया, वहाँ पर जाकर उनको श्राप देकर उनको पुण्य बनाया, हालांकि वो श्राप है लेकिन वो एक्चुअली पुण्य है. उसी तरह से ध्रुव महाराज के लिए नारद मुनि ने पुण्य बनाया, उनको दिशा निर्देश देके कि क्या करना है. तो जब ऐसे भक्त जो महान भक्त होते हैं, जो इस पृथ्वी पर चलते हैं, भ्रमण करते हैं, तो वो एक्चुअली सबके लिए पुण्य का निर्माण कर रहे हैं. और पुण्य का निर्माण करने का अर्थ है कि वो दूसरों को अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान कर रहे हैं रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठने का. श्रील प्रभुपाद जी, कल ही हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे प्रसाद के टाइम पर लीलामृत में, कि श्रील प्रभुपाद जी जुहू बीच पे वॉक के लिए गए थे, सैर के लिए. वहीं पे वो मंदिर बन रहा था उस समय, और जब वो गए तो बहुत अलग अनेक प्रकार के लोग आकर उनको प्रणाम करते थे. तो प्रभुपाद जी बोले दिस इज वैष्णव, ये वैष्णव है जिसको देखकर लोगों को कृष्ण का स्मरण हो, जिसको देखकर लोगों को कृष्ण का स्मरण हो. इसलिए वो बोलते थे कि हमारे भक्त जो हैं वैष्णव वेशभूषा में रहें, तिलक लगाएं, और उससे क्या होगा, लोगों को किसका स्मरण होगा, कृष्ण का स्मरण होगा. और कृष्ण का स्मरण मतलब इस भौतिक जगत के बंधनों से छुटकारा. जो व्यक्ति भक्ति प्रारंभ करता है तो भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार जो सबसे पहली चीज़ होती है क्लेशाग्नि. व्यक्ति जो है इस जगत के क्लेशों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कृष्ण का स्मरण करने से वो इस जगत के पापों से मुक्त हो जाता है, इस जगत के पाप, जगत में पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है. तो इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत आवश्यक है इस संसार में होना, ऐसे व्यक्ति को घूमना. और ये जो यहाँ पर जो कृपा है जिसकी हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कि रियल मर्सी, द रियल कृपा ऑफ द लॉर्ड, वो ये है कि हम सब के अंदर आंतरिक रूप से वी ऑल हैव दैट नेचर टू फाइट विद द अनर्थस, वी ऑल हैव दैट पाथ. लाइक ध्रुव महाराज, जैसे ध्रुव महाराज के पास बहुत सारी भौतिक इच्छाएँ थीं, उसी प्रकार से हमारे पास भी भौतिक इच्छाएँ हैं. तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने और नारद मुनि ने क्या किया, जैसे कि वहाँ पर वो श्लोक आता है कि भगवान जैसे गाय एक बछड़े की रक्षा करती है, लाइक ए काउ इज प्रोटेक्टिंग द काफ ऑल द टाइम, तो कृष्णा जो है वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं. लेकिन अंतर इतना ही है कि जो बछड़ा जो है वो पूर्णतया गाय के ऊपर निर्भर होता है, इसलिए गाय उसको पूरी तरह से ध्यान देती है. जैसे जैसे छोटा बच्चा होता है वो पूरी तरह से अपने माँ पर निर्भर होता है, तो उसी तरह से भगवान भी पूरी तरह से ध्यान देंगे यदि हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होंगे. तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, भगवान हमको शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, भगवान हमको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमको फ्री विल भी दिया है, स्वतंत्र इच्छा. और क्योंकि वो स्वतंत्र इच्छा दी है, और जब तक वो स्वतंत्र इच्छा का समावेश हमारी गंभीरता के साथ नहीं होता है, ईमानदारी के साथ नहीं होता है, वेन दैट फ्री विल इज नॉट कम्बाइंड विद द सिंसेरिटी, कृष्णा विल नॉट इंटरफेयर. कृष्णा इज दैट काइंड, कृष्णा इतने कृपालु हैं कि वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये व्यक्ति अपनी गंभीर, अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके गंभीरता के साथ मेरी तरफ आएगा. और जैसे ही वो व्यक्ति भगवान की ओर आने का निर्णय करता है, भगवान पूरी तरह से उसको अपने आलिंगन में ले लेते हैं और हर प्रकार की सुरक्षा, हर प्रकार की प्रेम उसको प्रदान करते हैं. तो कृष्णा प्रोवाइड्स हिज चिल्ड्रन स्पेस टू ग्रो एज दे विल, येट रिमेन्स लविंग टुवर्ड देम एंड प्रिपेयर टू हेल्प इफ दे टर्न टू हिम. He gives space, it doesn't force them. तो केवल एक ही चीज़ आ जाती है, चाहे वो ध्रुव महाराज का प्रसंग हो या प्रेवरत महाराज का प्रसंग हो, sincerity. That is the only message of the scriptures. क्योंकि ध्रुव महाराज के केस में भी बहुत सिंसियर थे, बहुत दृढ़ थे, बहुत सिंसियर थे, मुझे चाहिए ही. और नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो किया उन्होंने, है? पहला महीना 3 दिन में एक बार सूखे पत्ते, दूसरा महीना 6 दिन में एक बार जल, तीसरा महीना 9 दिन में एक बार यू नो वायु नहीं सॉरी पहला महीना फल एक्चुअली कपित फल, फिर दूसरा महीना 6 दिन में पत्ते, तीसरा महीना 9 दिन में जल, और फिर 12 दिन में सांस लेना, और फिर वो भी नहीं है पूरी तरह से एकाग्रचित होकर। तो ये जो संदेश है ये बड़ा विशेष है। प्रियमरत महाराज अपने गुरुजनों के प्रति बड़े वफादार, बड़े प्रेम से उन्होंने सेवा की। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की सेवा की, और उसी तरह का प्रसंग चैतन्य चरितामृत में देखने को मिलता है। जैसे कुछ दिनों पहले षडभुज प्रभु वॉज स्पीकिंग ऑन किंग प्रताप रुद्रा। किंग प्रताप रुद्रा का एग्जाम्पल इतना ऊँचा है कि यदि उसको समझने का प्रयास करें तो बहुत विशेष है। तो वो तो बहुत बड़ा पास टाइम है, अभी उसके लिए समय भी नहीं है, लेकिन सार में ये है कि उन्होंने पूरा प्रयास किया भक्तों को प्रसन्न करने का। रामानंद राय की इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ जाके मिलें, तो उन्होंने रामानंद राय को पूरी फैसिलिटी प्रदान की, और रामानंद राय ने बहुत गुणगान किया। किसके सामने? महाप्रभु के सामने। अरे वो तो इतना बड़ा भक्त है कि उसकी एक कण भी मेरे अंदर नहीं है, ऐसा बोला उनको। वो तो इतना आपका हमेशा चिंतन करता रहता है, वो तो ये है, वो तो वो है, बिकॉज रामानंद राय वॉज ए डिप्लोमैट, तो डिप्लोमेसी इज रिक्वायर्ड, यू नो, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू प्लीज पीपल। सो डिप्लोमेसी इज नॉट ए रॉन्ग वर्ड इफ इट इज यूज इन अ सर्विस ऑफ द लॉर्ड, यू नो। एंड उसी तरह से सारण भट्टाचार्य और रामानंद राय ने क्या व्यवस्था की, उन्होंने बोला आप मिलो ना एक बार राजा को, एक बार तो अपने चरण कमल दिखाओ। तो भगवान ने बहुत बहाने लगाए कि भाई यू नो मैं सन्यासी हूँ, और एक सफ़ेद धोती पे एक छोटा भी डॉट आ गया इंक का तो वो पूरे शरीर पर दिखता है। बोला नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत विशेष राजा है। बोले ये राजा शब्द ही सबसे प्रॉब्लम दे रहा है। एक मटके में आप अच्छे से दूध भर दो, लेकिन यदि वो मटके का प्रयोग यदि पहले दारू भरने में किया गया है तो वो मटका बेकार है। बोले नहीं नहीं, कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप क्या करो, उसके बेटे से मिल लो एटलीस्ट। तो कैसे धीरे धीरे करके यू नो भक्त व्यवस्था करते हैं भगवान के पास पहुँचाने के लिए। उन्होंने व्यवस्था की, पहले बेटे को बुलाया, फिर बेटे को दर्शन दिए भगवान ने, फिर बेटा गया वापस तो उसका भगवान ने आलिंगन किया, सॉरी चैतन्य महाप्रभु का जब आलिंगन किया तो राजा प्रताप ने आलिंगन किया, और राजा प्रताप को वही कृपा मिली। और उसके पहले सारण भट्टाचार्य ने एक और व्यवस्था की थी नित्यानंद प्रभु ने, क्योंकि उसने संदेशा भेजा कि यदि मेरे को राज्य नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं भिखारी बन जाऊँगा, क्या फ़ायदा मेरे को, यदि सॉरी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी तो मैं राज्य छोड़ दूँगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले देखो आप तो मिलोगे नहीं, एक काम करो अपना जो कपड़ा है ना, एक कपड़ा भेज देते हैं उसको, कम से कम जिंदा तो रहेगा ना वो कपड़े को देख देख के। तो तदिया यू नो भगवान से संबंधित जो भी चीज़ है वो भगवान ही है। तो इस तरह से भगवान अलग अलग तरह से व्यवस्था की, और बाद में सरण भट्टाचार्य उनको ट्रेनिंग दिया कि देखो अभी रथ यात्रा आएगी, और रथ यात्रा के समय में भगवान नाचेंगे, और उस समय आप वो गार्डन में जाएंगे, वहाँ पर आप जाना, और जाने के बाद आप श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के जो बीच के 5 अध्याय हैं उनको आप क्या करना, वर्णन करना, और वर्णन करके सेवा करते हुए आप उनको कृपा मिलेगी। क्या पूरा परफेक्ट ट्रेनिंग, कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि प्रताप रुद्रा पूरी तरह से सिंसियर थे, डिटर्मिंट थे। और जब वैसे किया, उन्होंने कपड़े त्याग दिए राजा के, सादे कपड़े पहन के अंदर जब वो गए, और जब उन्होंने भगवान के चरण कमल दबाने शुरू किए और जय तीते अधिकम करके उन्होंने गोपी गीत प्रारंभ किया, और जब वो इस श्लोक पर आए, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतम, कि आपकी जो कथा है ये अमृत है। तप्त जीवनम, जो इस भौतिक जगत के लोग हैं वो तप्त हैं, जल रहे हैं इस भौतिक जगत के दुखों में। कवि भीड़ितम कल्मशापहम, और कल्मश से मुक्त कर देते हैं उनको, ये कथा सुनने से क्या होता है, सारे कल्मश मुक्त हो जाते हैं। श्रवण मंगलम, केवल श्रवण मात्र से मंगलता का उत्पन्न होती है, केवल पुण्य आप बना सकते हैं केवल भगवान की कथा सुनने से। श्रीमदाततम, और वो क्या कर रहे हैं, इसको सब जगह बांट रहे हैं, बांट रहे हैं। ऐसे लोग क्या हैं, भूरिदा, वो सबसे ज़्यादा उदार व्यक्ति कौन है इस दुनिया में, वही हैं। तो ये जो है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो उन्होंने बताई, और जब उन्होंने ये सुना चैतन्य महाप्रभु ने, तो उन्होंने एकदम से सब कुछ छोड़कर आलिंगन कर लिया। किसका आलिंगन कर लिया, राजा प्रताप। आप भूरी दें, आप बांट रहे हैं, आप मेरे को सुना रहे हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप मुझे कथा सुना रहे हैं। तो ये जो है ना, कि जहाँ पर ये जो एक पॉइंट था, इसके साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ, कि ये जो पॉइंट है कि उनकी इच्छा भी नहीं थी नलकुबर और मणिग्रीव की, हैं, ध्रुव महाराज की भी कोई पता नहीं था उनको मुक्ति के बारे में, उनकी केवल एक ही इच्छा थी। लेकिन ये जो महान भक्त होते हैं ये उस पुण्य का निर्माण करते हैं, और ये केवल एक भक्ति कर सकता है। भौतिक जगत में भी ना, देर इज ऑलवेज देर इज अ प्रॉमिस, ओवर प्रॉमिस यू नो बट अंडर डिलीवर्ड ऑलवेज, यू नो देर ऑलवेज ओवर प्रॉमिसिंग, मोबाइल स्कीम, रिजॉर्ट वाले, एवरीबडी, एवरी सर्विस प्रोवाइड इज ओवर प्रॉमिसिंग। आप हमारे पास आओ, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। अरे वो आपको ज़्यादा कैसे दे सकता है? ही इज शेयरिंग हिज रिसोर्सेज टू इंक्रीज रिसोर्सेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट इट, कि वो आपको कुछ दे रहा है अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए, अपना धन बढ़ाने के लिए, तो वो थोड़ी घाटे में जाने वाला है। और उसको कोई इच्छा नहीं है सेल्फलेस सर्विस करने की। यदि किसी व्यक्ति को सही में गुड करना है किसी का, तो सबसे पहले उसको इच्छा होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए व्हाट इज़ गुड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन इफ ही नोज व्हाट इज़ गुड, ही शुड बी सेल्फलेस। तो केवल भगवान के भक्ति हैं जो निस्वार्थ हैं, और वो ही सही अच्छा या रियल गुड कैन गिव टू अदर्स। एंड व्हाट इज द रियल गुड? दैट रियल गुड इज एक्चुअली मर्सी ऑफ द लॉर्ड, और ओनली दोज हु लव अस, यू नो, जैसे माता पिता हैं वो प्रेम करते हैं, तो बच्चा यदि सोचता भी नहीं अपने भविष्य के बारे में, वो सब व्यवस्था करके रखते हैं, हैं? कि भाई इसके लिए इतना पैसा रखना है, एजुकेशन यहाँ करानी है, घर खरीद कर रखना है, क्या क्या नहीं करते, हुँ? तो ये प्रेम है। तो जिसके पास प्रेम है वो कर सकता है। ट्रेन में भी आप जाएंगे, यदि कोई प्रेमी व्यक्ति भूल गया तो बोल बैठो 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 बैठो, अरे जगह नहीं है, जगह हो जाएगी, प्रेम है तो जगह हो जाएगी, ऐसा है। तो जब प्रेम है, निस्वार्थ भावना है, तो फिर सब कुछ हो जाता है। सो इसलिए नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, चैतन्य महापुरुष हैं जो महान उदार हैं और वो इस कृपा को देने आए हैं। तो इसलिए उनका केवल एक ही चिंता है, यदि आप चैतन्य चरितमानस पढ़ें, वो बोल रहे हैं कि मेरी एक ही चिंता है, मैं ये फल लेकर आया हूँ और बांटने वाले नहीं है, मैं अकेला कम पढ़ रहा हूँ बांटने के लिए, तो बस मुझे लोग चाहिए जो बांट सकें, फ्री में बांटना है, लेकिन बांटने वाले नहीं है। तो यदि हम इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में केवल यदि उनको असिस्ट कर सकें इन फलों को चखने में और फिर बांटने में, चखना भी आवश्यक है, और फिर सही में हम उनकी कृपा को स्वीकार कर पाएंगे। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब मायापुर में मंदिर का निर्माण किए, तो मंदिर का निर्माण करने से पहले उन्होंने गेस्ट हाउस बनाए भक्तों को रहने के लिए, क्योंकि यदि भक्तों की सेवा होती है, भक्तों की सुविधाएं होती हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और वहाँ पर सब प्रकार का समृद्धि, सब प्रकार का मंगलता आती है। तो ये जो सिद्धांत है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है वैष्णव परंपरा में, कि भगवान के भक्तों का क्या रोल है और उनकी कृपा किस प्रकार से अलग अलग तरीके से आती है। और एक्चुअली रियल कृपा जो है भगवान के भक्तों की, वो ये है कि वो हमारे जीवन से जन्म मृत्यु को मुक्त कर देते हैं। जैसे कि एक बार एक जादूगर आया था प्रभुपाद जी से मिलने, और वो कभी एक सिक्का, यू नो, कॉइन इधर रखता था, फिर गायब कर देता था, फिर नीचे रखता था, फिर उधर से निकाल लेता था। तो प्रभुपाद जी ने बोला, इम्प्रेसिव, वेरी नाइस, बट कैन यू मेक बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ डिसअपियर? बोले वाओ, इट्स समथिंग अमेजिंग, आई कैन डू दैट। तो ओनली भगवान का भक्त है जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करा सकता है, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त कराकर वासुदेव के स्तर पर ला सकता है, और वासुदेव के स्तर पर लाने के बाद कभी यदि हम उससे च्युत भी हो गए, जैसे ध्रुव महाराज के पास टाइम में आगे जाके फिर से एक बार वो भटक गए थे युद्ध करते समय, लेकिन फिर से उनको वापस आना पड़ा भगवान की कृपा से, ऋषि मुनि ने फिर से उनको याद दिलाया भगवान पर ध्यान लगाओ। सो थैंक यू वेरी मच, इस टाइम आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपका आभारी हूँ कि भगवान के भक्तों के बारे में गुणगान करने का अवसर मिला, और अभिलाषा है कि हम भी इसको फॉलो कर पाए। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, कुछ प्रभु जी वॉन्ट टू से समथिंग? थैंक यू प्रभु।